परंपरा सुन किसका है? त्याची भावना जपायची भावना होती, त्याच्यामध्ये काही आळशी आळशीपणाची भावना होती. हम हमारे लिए सोच रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर हम साधना भक्ति कर रहे हैं तो हमें वैसा ही साधना भक्ति करना है जैसे शास्त्र में कहा गया. दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना था. जैसे हम लोग काउंसिलर मीटिंग में कृष्ण चंद्र को कह रहे थे, पहले कहते कि रूप गोस्वामी ने कहा है गुह्य मत्याति प्रस्तुति, हमारे गुप्त बातों को दूसरे भक्तों को कहना चाहिए. तो कभी कभी भक्त कहते हैं अगर हमारे गुप्त बातों को भक्तों को कहेंगे तो क्या करेंगे, पूरा न्यूज पेपर बन जाता है, सबको समझ में आ जाता है, तो कैसे विश्वास रखेंगे. मैंने एक प्रश्न नारायण महाराज से पूछा कि महाराज लोग ऐसा कहते हैं कि गुह्य मत्याति की प्रस्तुति करना बहुत डेंजरस है, कि करने से क्या होगा, हम जैसे बोलेंगे तो अगले दिन सबको समझ में आया. तो नारायण ने कहा आपको ये देखना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं करना है. आप जब लोगों से गुप्त बात सुनोगे यू डोंट एक्सपोज, आप दूसरों को मत कहो, और साथ साथ आपको अपने गुप्त बातों को दूसरों को कहना है. ऐसा नहीं कि पब्लिक में नहीं, इधर बैठकर मैं नहीं कहूंगा मेरे गुप्त बात क्या है. जो मेरे निकट जो भक्त है विशेष जिनसे मेरी मित्रता है उनके साथ वैसी चर्चा होगी, मतलब उसमें हमें पीछे नहीं होना चाहिए क्योंकि रूप गोस्वामी कर. इसलिए जो जब कुछ कहा जाता है, कुछ शास्त्र के नियम कहा जाता है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वही वक्त एक्चुअल में ऐसा करता ही नहीं हो कभी. नहीं, आपको देखना चाहिए कि मैं कर रहा हूं कि नहीं. जैसे शास्त्र में कहा गया है कि अपने दोषों को देखो, अपने दोषों को देखने से क्या होगा, कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं. शुद्ध गोस्वामी जब भागवत कहने के लिए आए, शौनकादि ऋषि ने उनको कहा भागवत सुना, तो शुद्ध गोस्वामी ने क्या कहा कि मैं तो योग्य नहीं हूं, मैं तो निम्न जाति का हूं, मैं तो प्रतिलोम अनुलोम जाति का हूं, मिक्स कास्ट का हूं, मैं कथा करने के लिए योग्य नहीं. लेकिन सुखदेव गोस्वामी के कृपा से मैं कह रहा हूं. यानी कि ऐसे जो कथाकार बड़े बड़े हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार से अपने दोषों को देखते हैं, कुछ न कुछ मिल ही जाता है उनको. रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं क्या, मैंने एक कथा लिखी है, मैंने वो जब ड्रामा लिख रहे थे ललित माधव विदग्ध माधव, उस समय सनातन रूप गोस्वामी महाप्रभु को अपने जो काव्य है उसको पढ़कर सुनाते हैं. तब रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं तो नीच हूं, नीच परिवार में भी मेरा जन्म हुआ है तो मैं क्या कथा कर सकता हूं. लेकिन फिर भी अगर अग्नि को पुलिंद व्यक्ति जलाता हो, पुलिंद यानी कि जो जंगल में रहने वाले जो मांस बेचते हैं, चार वर्णों के सी नीचे है, तो अगर पुलिंद में अग्नि लगाएगा तो क्या अग्नि जलेगा नहीं. ये पुलिंद का अग्नि है, इसमें ज्यादा गर्मी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो अग्नि अग्नि ही है. वो कहते वैसे ही कृष्ण कथा है, मैं पुलिंद हूं, मैं नीच हूं, लेकिन क्योंकि कृष्ण कथा है वो दूसरों के प्रति प्रभावित करेगा ही. इसलिए दूसरों की भावना हमें शास्त्र के अनुसार देखना चाहिए कि मेरी भावना क्या है. उसने उसकी माता है वो तो जान गई थी कि वो आलसी होकर वैसा कर रहा है. जैसे प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी हाउ डू नो, कैसे जान सकते कि एक्सीडेंटल पतन है या जानबूझकर किसी का पतन हुआ है, कैसे जान. तीन प्रकार के पतन के बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं. एक पतन इसके लिए होता है दुर्लक्ष, मॉर्निंग जगह में सोते रहना, मंगल आरती 4:30 बजे हो तो विचार करना 10 दिन होता तो कितना अच्छा रहता। हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी थे और वो छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा किसी भक्त को, एक ही समस्या है, मंगल आरती बहुत जल्दी है, 10 बजे होना चाहिए मंगल आरती, चले गए छोड़कर। तो ये सोचना कि क्या है इतना जल्दी उठा देते, अच्छा है बाकी सब, लेकिन इतना सुबह उठकर जप करना, मंगल आरती में भाग लेना, तो साधना में दुर्लभ होने के कारण पतन होना। साधना में दुर्लभ हो गया निश्चित है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। हमारी भक्ति दुर्लभ बन जाती है, विषय वासना बढ़ने लगते हैं, भक्ति में रुचि कम हो जाती है, एक है। दूसरा वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध के बारे में चिंतन करना, इसका क्या दोष है, कैसे दिखाई देगा और मैं कैसे दूसरों को बताऊंगा और इसके बारे में लिखूंगा। कई भक्तगण उनका जीवन यही है, केवल अपने गुरु बंधुओं के दोष देखने में, उसको लिखने में रुचि लेते हैं और उससे बढ़कर पतन है ही नहीं। आपको दोष दिख रहा है और उसको देख रहे हो और उसको लिख रहे हो और उसमें आनंद ले रहे हो, यानी कि ये पतन नहीं है, ये दूसरा प्रकार का दोष पतन होना। और तीसरा भगवान की योजना, भगवान स्वयं गिरा देते। जैसे परीक्षित महाराज ने जो सांप लगाया ऋषि के गले में, उनमें साधना में कोई कम नहीं थी, न तो वैष्णव अपराधी थे, तो क्या है, वो कृष्ण का ही अरेंजमेंट था, योजना थी। या चार कुमारों ने जय विजय को शाप दिया, वो भी कृष्ण का ही अरेंजमेंट था। चित्रकेतु तो महाराज को पार्वती ने शाप दिया, तो पार्वती ने शाप नहीं दिया, पार्वती को भगवान ने यूज किया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के। तो तीन प्रकार के पतन। तो किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी हम कैसे जान सकते हैं मेरा पतन कौन सा है? लोग चाहते हैं कि मेरा पतन हमेशा कृष्ण का ही अरेंजमेंट हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने कहा वो आप समझ नहीं पाओगे, तो केवल मैं समझ पाऊंगा कि तेरा पतन तेरे दुर्लभ से हो गया, वैष्णव अपराध से हो गया, भगवान का अरेंजमेंट आपके लिए ही नहीं हो, वो केवल शुद्ध भक्तों के लिए, वो शास्त्र में है। अगर आप शास्त्र में रहोगे तो वो कृष्ण का अरेंजमेंट है, नहीं तो फिर क्या है, एक तो वैष्णव अपराध है दुर्लक्ष, कोई प्रश्न ही नहीं पूछना है कि मेरा पतन कैसे हो गया, भगवान का अरेंजमेंट था क्या? नहीं, भगवान का अरेंजमेंट नहीं, ये तुम्हारा दोष है। तो दोष देखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरों का नहीं खुद का। अगर समय खुद के दोषों में देखने में चला जाएगा तब क्या होगा, तो झगड़ा भी होता नहीं, संघर्ष नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा समय किसमें जाता है, हमारे जो आंखें है वो दूरबीन बन जाते हैं, हमारे कान जो है वो रेडियो बन जाता है, और हमारी जो जीवा है वो न्यूज पेपर बन जाती है। कि सुनना, देखना और बोलना, तो इस प्रकार से हमारा जो हृदय है वो पत्थर के समान बन जाता है। तो जब हरिनाम करेंगे तो पत्थर पिघलता नहीं है, और जब पिघलता नहीं है, एक तो पत्थर पिघल गया तो यहां से पानी, अगर पत्थर नहीं पिघला तो आंखें बंद, ये दो ही है, नींद आने लगती है। जाग्यता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कदम मैंने नहीं कहते, रुचि न होने के कारण जाग्यता यानी कि जड़ बन जाते, हम जड़ हो जाते और हमारा हरिनाम भी जड़ हो जाता है, और हमारा बिगड़ जाता है और जड़ बन जाता है, इतना हैवी बन जाता है, उसको उठाने में लगता है पता नहीं कैसा मारा गया, दिखता कैसे, हल्का क्यों नहीं दिया, और भी हल्का होना चाहिए। तो ये हमारा दुर्भाग्य, तो हमारे दुर्भाग्य के बारे में सोचना कि मैं कितना बड़ा दुर्भाग्य हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते दुर्दैव में दृश्य यह जानना दो, बड़ा कोई आकर्षण नहीं, तो ये भक्ति है। भक्ति यानी कि अपने दोषों को देख करो। परीक्षित महाराज, अगर भागवत शास्त्र का इसको अगर जानना है हर एक साधक को प्रथम स्कंध जो है जो प्रभुपाद जी ने इतना महत्व दिया है, प्रभुपाद जी ने कहा था इस प्रथम स्कंध को अगर ध्यान पूर्वक पढ़ोगे, इसमें सब कुछ दिया मैंने और आपको और पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पहले समझ में नहीं आता था, अभी भी समझ में नहीं आता, लेकिन प्रथम स्कंध को ध्यान पूर्वक पढ़ने से, उसके बारे में चर्चा करने से समझ में आता है कि भक्ति यानी कि क्या है। कुंती के प्रार्थनाओं को पढ़ो, भीष्मदेव के प्रार्थनाओं को पढ़ो, परीक्षित महाराज को जब शाप दिया गया इसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो इसको, ये दो 18 और 19वां अध्याय। परीक्षित महाराज कौन है और परीक्षित महाराज अपने आप को क्या समझते हैं, ये दोनों समझ में आएगा। परीक्षित महाराज का जन्म, परीक्षित महाराज को शाप दिया गया है और जब शाप के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, ये तीन अध्याय अगर हम पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक और जानने का प्रयास करेंगे तो हमारे भक्ति में बाधा नहीं आएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जब तक इनको हम पढ़ेंगे नहीं दशम स्कंध कुछ नहीं समझ पाएंगे, चैतन्य चरितामृत कुछ नहीं समझ पाएंगे, केवल अच्छा लगेगा। जैसे लोग तमाशा देखते हैं, तमाशा भी अच्छा लगता है लोगों को, तमाशा देखते देखते भी लोग रोते हैं, वैसे ही चैतन्य चरितामृत सुन के रोएंगे। द्रौपदी जी का कहते हैं ऐसे जो रोना है वो क्या करेगा, वो शास्त्र के सारे जो सिद्धांत है उसको धो डालेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रथम स्कंध इतना महत्वपूर्ण है, खास करके परीक्षित महाराज की जो भावना है तब समझ में आता है कि वैष्णव क्या है, वैष्णव कौन है, ये समझ में आएगा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की प्रभुपाद की जय।